نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القلب مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صحیح بخاری میں ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور تمہارا تعلق ایسا ہے پوری امت کی طرف اشارہ فرمایا اور بالخصوص آج کے زمانے میں یہ بالکل صادق آتا ہے مکمل طور پر کہ اپنے تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تعلق ہے آج ہمارا اور ان کا کہ جیسے ایک بہت بڑی آگ روشن ہو جل رہی ہو بہت بڑی آگ کسی نے جلائی ہو روشن راگ کے اندر جو پروانے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اس پہ گر رہے ہوں بے قراری کے ساتھ اسی آگ کی طرف جل بھی رہے ہوں جا بھی رہے ہوں اور جل بھی رہے ہوں پھر بھی جلے جا رہے اور وہ ان کو نکالتا ہو تو ارشاد فرمایا کہ میرا بھی تمہارے ساتھ معاملہ کچھ ایسے ہی ہے کہ میں کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں دوزخ کی آگ سے نکالتا ہوں کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ کی آگ سے نکالتا ہوں اور ان باتوں سے روکتا ہوں کہ جو تمہیں دوزخ میں جلانے والی ہیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں لیکن تم ہو کہ پھر بھی اس آگ میں جلتے جاتے ہو کتنے شفیق کتنے رحمت اللہ العالمین اللہ جن کے بارے میں مومن کے ساتھ رعوف اور رحیم فرمایا کس قدر درد ہے امت کا اور کس قدر محبت ہے امت کے ساتھ کیسی مثال کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمدردی اور محبت کا رشتہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رحمت والی ذات ہے آپ کی اتنی شفیق ذات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں وہ برکت رکھی ہے اور وہ تعلق رکھا ہے امت کے ساتھ جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ بھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے آپ کی ذات سے اتنا بھی تعلق رکھے چھوڑا سا کتنی دل لگتی سوتے ہیں اس کو درود شریف کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم انداز اللہ تو کیسی ذات ہے آپ کی کتنی بابرکت ذات ہے کہ آپ پر ایک دفعہ دودھ بھیجنے پر یا اس طریقے کے ساتھ ایک نسبت رکھنے پر ایک دم کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں کتنی ضرور ہمارا اس پہ تعلق لیکن آپ کی اتنی بابرکت ذات ہے اتنے شفیق ہیں آپ اتنی سی بات سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں दस खताएं, वो जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें रोकता हूँ दोजख के काम से, लेकिन तुम मुके मुकते ही नहीं हो। दस रहमतें अल्लाह की नाजिल होना रमजान के अंदर, मुझे बताएं क्या चीज़ है। गारंटीड दस खताओं का माफ हो जाना और दस दराजात जन्नत में बुलंद कर दे, दुनिया का नाम नहीं जन्नत का हदीस बन चुके हैं। जन्नत के अंदर दस दराजात उस शख्स के बुलंद हो जाते हैं। और दस नेकी लिख दी जाती है, मुझे बताएं कि किस कदर रहमतें हैं और किस कदर शफकतें हैं आपकी ज़ात के साथ। तो फरमाते हैं कि भाई देखो, ताल्लुक जो रखता है अल्लाह के नबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, तो जवाब फौरन आता है वहाँ से, मोहब्बत का उसी वक्त आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कितनी प्यारी बात कही है कि मैं तो तुम उन बातों से रोक रहा हूँ, बस तुम्हारे फ़ायदे के लिए रोक रहा हूँ, जो बातें मुझे मैं तुम बातें कहता हूँ जो रोकता हूँ वो तुम्हें जन्नत दोज़ख में ले जाने वाले, तो क़यामत तक अल्लाह के हबीब का वो इंतज़ाम अल्लाह ने फरमाया। देखें कैसा कि पूरी अहादीस जो है वो बिल्कुल वैसी है कि नबी पाक साहब में रोक रहे हैं इन चीज़ों से, और क़यामत तक तो कायम रहेंगे अल्लाह के नबी की हदीसें। देखें हर हदीस जो यही पैगाम देती है कि भाई ये काम मत करो, ये बुरा काम है, हम रुकते हैं उससे। कितने जवाब पैदा करते हैं, कितने बहाने तराशते हैं, कितने हम उस पर नुक्ते निकाल लेते हैं और मजबूरियाँ पेश कर देते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक बात है, क्या प्यारी एक हदीस में आ रही है दरूद के बारे में, हम आते हैं कि जो मेरा जिस पर मेरा जिक्र किया जाए और मुझ पर दरूद ना भेजे, ये तो बहुत बड़ी बेवफाई है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा शिकवा किया है नबी पाक साहब, कितनी बड़ी बेवफाई कर रहे हो तुम, मुझ जैसा दोस्त को मिल सकता है, मुझ जैसा तुम पे शफकत करने वाला रहम करने वाला को मिल सकता है इंसान, ना मिलेगा ना मिल सकता है। तो ये आप सोचें, वाकई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आशिक कहलाते हैं लोग, अल्लाह के महबूब बन जाते हैं, अल्लाह के नबी की जो बातें मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शहादत को सुनते हैं, किसी तरीके से पहुंच जाए उनकी तरफ, किसी मजलिस में पहुंच जाए, बात को सीने से लगा देते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात से मना किया है, मुझे नहीं करनी चाहिए बात, इसमें कोई बहाने तराश नहीं चाहिए, इसमें जो है किसी किस्म का भी ये नहीं करना चाहिए कि बड़ा मुश्किल है मैं नहीं कर सकता। फौरन बात को गौर से सुने आदमी, ख़ास तौर पर ये आजकल तो रमज़ान है, अल्लाह के फजल से पूरा माहौल है इस चीज़ का, गुनाहों से बचना बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह नाराज़ होते हैं। तो जिन लोगों पर अमल करते हैं इन बातों पर, तो खसूस जिनके अहतमाम होते हैं दरूद पाक का पढ़ने का, तो ये बात समझ आए कि भी एक पढ़ने में इतना ख़जाना मिल रहा है तो पागल ही हुआ जिस खजाने को हासिल ना करें, विरद बनाते हैं जो लोग। तो अल्लाह के नबी फिर वैसी मोहब्बत करते हैं उनके साथ, ख्वाहिशात तो हमारे भी हैं कि अल्लाह के नबी हमसे मोहब्बत करें। शाह वलीउल्लाह बहुत बड़े इंसान गुजरे हैं, बहुत बड़े वली थे, उनके बारे में मदनी रहमतुल्लाह ने बाहवाला मिर्ज़ा मसर जाने जाना ये नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, दिल्ली के अंदर इनका मज़ार है, तो वो लिखते हैं मदनी रहमतुल्लाह उनके हवाले से बात कि उन्होंने लिखा है, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे ना सिर नक्शबंद के, मिर्ज़ा मसर जाने जाना रहमतुल्लाह कि अल्लाह सुबहाना ताला ने मुझे रूहानी सैर कराई पूरी दुनिया की, मिर्ज़ा मसर जाना फरमाते हैं पूरी दुनिया की मुझे रूहानी सैर की, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं उन्होंने लिखा है। तो पूरी दुनिया कायनात की मुझे सैर करे अल्लाह पाक ने रूहानियत की सैर, वो भी इंसान है कि हम भी इंसान हैं। फ़र्क क्या है कि वो बात समझ गए कि अल्लाह के नबी ने जिस चीज़ से रोका था वो रुक गए, बस ये एक बैरियर है। तो कहाँ पहुँच जाते हैं इंसान, मुझे पता है। हम तो गोश पोश खाने पीने के चक्कर में रहते हैं लोग, ज़िंदगी इंसान अपने समझे तो कितना मुकाम उस इंसान का बुलंद हो जाता है कि दुनिया के झगड़े ये फजूल बातें फितने फसाद इन चीज़ों से वो लोग, उनका काम नहीं होता है, छोटे छोटे बातों में सब बकवासबाजी से ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह ताला को दुनिया में इतना बुलंद मुकाम देता है कि क्या सैर होगी जो रूहानी सैर कराई। कहते हैं उन्होंने लिखा है कि सारी रूहानी सैर कराई, तो क्या अजीब बात लिखी उन्होंने, कहते हैं कि मैंने कहीं भी शहर के किसी मुकाम में भी शाह वलीउल्लाह जैसा इंसान देखा ही है। कितने बुलंद दर्जे के आदमी हो, नहीं पता है। तो वो अपने को आप लिखते हैं शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जब मैं दरुद भेजा तो आपने पसंद फरमाया। ये तो मुशाहदात थे ना उनके, ताकि हमें तकवीत उन चीज़ों की होता है। अब कितना अल्लाह ने हमें मौका दिया है, रमज़ान में दरुद पढ़ते हैं ना हम, ये कितना बड़ा मौका है। हम इस वक्त एहसास नहीं हो रहा कि क्या हुआ है, कैसे अल्लाह ने हमें मौका, अल्लाह ने करम फरमा दिया, अल्लाह ने रहम फरमा दिया। अब सोच कितना बड़ा करम है, कितने खजाने अल्लाह ने दे दिए। तो कहते हैं जब मैं दरुद पढ़ता हूँ नबी करीम खुशी का इजहार फरमाते हैं और अनशरा फरमा देते हैं, यानी और मेरे अंदर की जो कैफियत को ना नूर नूर कर देते हैं, एक कैफियत बता रहे हैं। खुशी का इजहार फरमाते हैं, मेरे अंदर जो अनशरा कर देते हैं, यानी पहले ही माशाल्लाह तो ख़जाना है रहमत का, तो अंदर पता नहीं क्या बन जाता है, अनशरा कर देते हैं मेरे अंदर को। इतना इंसान अंदर से इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा इंसान है, कहते हैं अनशरा कर देते हैं। सुबहानल्लाह, आप कहते हैं कि खुद फिर तशरीफ भी ले आते हैं, चेक खुद भी फरमा देते हैं और फिर दुरूद पढ़ाना। तो ये आप देखें अल्लाह के नबी के समझ ताल्लुक पैदा करने की इंसान को कितने दर्जे इंसान को मिल जाते हैं। एक और अल्लाह के वली थे ज़रा शहराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि इन लोगों किससे हैं जिन्होंने नबी पाक ने ताल्लुक़ को पैदा किया है मोहब्बत के साथ, ऐसा ताल्लुक जुड़ जाता है इंसान को। हम भी जाते हैं मदीना मुनव्वरा, ये लोग भी जाते हैं मदीना मुनव्वरा, फ़र्क देखो कितना है। हम तो खजूरों और पानी के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये लोग पता नहीं क्या कुछ ले आते हैं। सोचने की बात सोचिए, ये लोग पता नहीं क्या से क्या अल्लाह ताला उनको इनामात और क्या के नवाजिशें अल्लाह पाक अता फरमा देता है। हम तो यहाँ से हम जमा करके लाते हैं ये चीज़ें और वो कुछ और चीज़ें लेके आते हैं। अभी आज के मैं आपको वाक़ सुना दूँगा, सच्चा पक्का वाक़ा, चंद दिनों पहले का। मतलब ये बंद नहीं हुआ सिलसिला, हमने अपनी आँख में बंद किया है। तो हज़रत श्री जो थे शराजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हम गए हुए थे मक्के से मदीना, मुफलिस आदमी थे, भूखने से पूरा हाल था हमारा, और वालिद साहब साथ थे, वो परेशान हो गए, हम बच्चे थे रोते थे, बड़े दर्जे के बुजुर्ग थे उनके वालिद साहब, ताल्लुक देखें कितना था। मदीना में हम पहुँच चुके थे, मदीना पहुँचे तो कोई और सारा था ही नहीं इन लोगों का। कहते मेरे वहाँ देखा मेरे वालद ने मस्जिद नबी में थे, मराकब हो गए, मराकब हो गए वहीं तरह के दरख्वास्त की नबी की सब से क्या, हम तो भूखे मर गए, बड़ा बड़ा हाल है हमारा, तो इसी मराकब में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो उसको थोड़ा बहुत आँख खोली, रो भी रहे हंस भी रहे। तो हमने पूछा भाई क्या बात है, आप रो भी रहे हंस भी रहे, क्या हो गया थोड़ी देर के अंदर। तो फिर कि अभी सरकार दस तशरीफ लाए थे और मुझे मेरी मुट्ठी के अंदर ना पैसे दे गए, और फिर मुट्ठी खुली तो पैसे मौजूद थे। कहते हैं शेराज तक उस जमाने का सफ़र कितना बड़ा होगा, हमारी दौलत ख़त्म नहीं हुई थी। और ख़ुद मेरे हजरत का वाक़ है रहमतुल्लाह, वो भी फिक्र फिक्र जिंदगी थी तो बेचारा कई दिन से खाना वाने नहीं खाया था जी। तुम जाहिर की ये बात खुद अपने मुँह से बताइए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या उनके साथ वाक़यात होते होंगे, तुम जाहिर ही नहीं करते थे कभी। तो इस तो हंस के एक मजलिस में बात कर दी थी तो लोगों ने कैच कर ली, जर्नलिस ये कोई नहीं कि मजमू लगा के बात हो रही है, और ये कोई ख़ास आदमी बैठे थे तो उस मजलिस में तो हजरत ने हंस के ये बात बयान फरमाई तो लोगों ने कैच कर ली। वरना तो उनके साथ तो जो वाक़यात होते होंगे ऐसे लोगों के साथ तो हर वक्त ही वहाँ ईदी होती है। कहना मैं लेटा था तो बहुत दिनों से भूखा था, अब पता नहीं कितने दिन होंगे, सुभान अल्लाह। तो मुझे नहीं मिल रहा था तो लेटे लेटे देना बहुत सख्त भूख लगी थी और मुझ में इतनी जरूरत भी नहीं थी कि मैं दरख्वास्त भी करूँ कि बेअदबी ना हो जाए, ये भी एक अदब कम काम देखे। ये भी अच्छी बात है, कह देना अच्छी बात है, लेकिन बात लोगों को तो इतनी मोहब्बत एहतियात होती है कि यार क्या तंग करना किसी को। आँख बंद थी लेटा था तो आँख मेरी एकदम खुली, अजीब से धूम से उसके रहता ना इंसान के, ऐसा हुआ देखा मुट्ठी खोले तो रियाल था एक बड़ा सा मुट्ठी, कहता जिंदगी गुजर गई अब तक उस रियाल की बरकत देख लो, मुफ्त से आती ही नहीं, हर काम हो जाता। अब भी शिकत फरमा, अभी एक फैमिली गई हुई थी उम्रे पर, छोटी बच्ची साथ थी, चार पांच महीने ही बच्ची होगी, फैमिली बहुत अच्छी थी, ताल्लुक बहुत अच्छा था, अल्लाह दोनों का अल्लाह अल्लाह के रसूल से अच्छा ही होगा ख्याल में। तो मैं बच्ची को हमेशा हाजी के लिए ले जाता रोजे पर, तो एक अजीब कैफियत होती है, जाली के बिल्कुल जाली के सामने खड़ा हो जाता, रश के अंदर ही बच्ची को ले जाकर खड़ा हो जाता। बच्ची जो थी वो भी देखती थी जाली की बड़ी मोहब्बत के साथ, तो होता है क्या कि सब हट जाते थे, छुड़ते उड़ते रश छोड़ देते थे रास्ता, खड़ा रहा जितने खड़े, अजीब वक़ा ये भी इतने रश के अंदर। तो एक दफ़ा क्या हुआ सुबह कि वो बच्ची भी इस तरह देख रही थी, बच्ची जाली के साथ खड़ी, वो भी खड़ा था, पत्नी कितना महबूब पसंद आया होगा तीनों को, तीन है ना वहाँ, तो एक तो नहीं ना, गारिसपुरी में तीन हो गए थे ना कल, अल्लाह के नबी और अबू सदीक, और अल्लाह ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ भी तीन है ना, तीनों की शफकत। तो क्या हुआ एकदम अजीब चीज हुई, एकदम कोई आया और नोटों का इतना पत्ता उसके बच्चे के हाथ में आके चला गया, दुनिया हैरान होगी देख के भाई अल्हम्दुलिल्लाह कैसी शिकत फरमाई, पसंद आ गई बच्ची नबियों का पसंद को, खाली नहीं भेजा। ये नस्बत होगी तो मोहब्बत होगी ना, तो सुन्नतों पे अमल होगा ना, तो कभी मकबूलियत होती है। ये किससे तो नहीं है, हकीकत है। हमें धक्के पड़ते हैं पीछे से आगे से, चलो चलो आगे निकलो, तो हकीकत में तो शफकत तो वहीं से होती, दुरुशी बरकत तो भाई साजिश गुनाहगार ने एक देखी है, तो वहाँ दुरुशी पढ़ता था बड़ा सख्त रश होता था, मदीना मुनव्वरा में बड़ा हैरान हुआ आज तक। तो वो नहीं मतलब रश के अंदर नहीं मुश्किल होता था, रमज़ान का वक्त था, रमज़ान कई सालों के बाद, तो एकदम मुझे एक दुरुशी याद आया कि दुरुशी जो है नबी ने फरमाया कि ये जो दुरुशी पढ़ता है तो मेरे करीब हो जाता है, मैं इसे इसको तो इस्तेमाल करके देखूँ ये रश के अंदर, सुभान अल्लाह। वो ऐसा नुस्खा लगा जैसे दरूद का वर्द करता, वल्लाह बिल्कुल जाली के सामने जा खड़ो था, खींच रहे थे नबी पाक से, कितनी सदाकत है सर। तब ये हदीस मैंने आपको सुनाई कि मैं तुम उन बातों से रोकता हूँ जो तुम्हें दोज़ख़ में ले जाने वाली है। तो ये एक दुरुशी फैसला फरमाया, ये जो करेगा मेरे करीब होता चला जाएगा। मैं सोचे कुर्बत यहाँ क्यों ना ली जाए, इस रश्य तो बचा जाए कम से कम, हैरान यानी हैरानी की बात तो नहीं, बरकत देखें कितनी इस दृश्य पर। और दृश्य मैंने पढ़ा रास्ता खुलता चला जाता था, रमजान का रश पता ही आपको कितना होता है, और बिल्कुल सीधा अल्हम्दुलिल्लाह जाली तक जा खड़ा कर दे। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मुशाहदात के अंदर लोगों ने बताई हैं, देखें कैसी कैसी चीज़ें हमारे सामने। आपने फिर बोलते मेरी सुनत पे अमल करो तो बहुत कुछ मिल जाता है, कितनी तबीयत घबराती है हमारी, इस पर सोचिए आप भाई ये छोड़ दो, ये गंदी चीज़ है, लज्जत तो दे रही है तुम्हें थोड़ी देर के लिए, ना करो ये क्या मुझे पसंद नहीं है, ये तो कहा कि अल्लाह के मांगे नहीं, तुम फिर भी घुसे जाते हो जहन्नुम के अंदर, हम फिर वही काम करते हैं। यहाँ जो अब ये मजमू लगता है आप आए, अल्लाह की तरफ से है ना सारा, अल्लाह की तरफ से आप आए, मैं बैठा और अल्लाह की तरफ से बातें जो मुँह से निकलती हैं इंसान की। तो ये मकसद ही है कि भाई हमें दोज़ख़ की आग से बचाया जाए। अल्लाह के नबी ऐसी मवाद छोड़ गई, ऐसी चीज़ें छोड़ गई जो बात निकली आदमी गैर से सुने कि भाई वाकई आंदा में, तब तो उसका मजलिस में आना जो है ना, वरना तो वही है कि बेवफाई की, मैंने दुरूद भी पढ़वाया इनसे, सब कुछ किया लेकिन लोगों ने मेरे साथ बेवफाई की है। बेवफाई ना हो ना नबी पाक के साथ, जो बातें भी आजकल मजलिस में मिल रही हैं पहुँच रही हैं, ख़ास तौर पर जिसका इशारा फरमाया सरकार कि मैं तो जो कहता हूँ दोज़ख़ से बचने के लिए कहता हूँ तुम्हें, नहीं तुम फिर जलते हो, पता चले कि ये गुनाह है, ये चीज़ उसको गुनाह अजीम समझे। आप जबान से निकली एक चीज़ हुई वो कितनी बड़ी चीज़ होगी। मैं आप बताए दरूद शरीफ की बात सुन लें, शाह वलीउल्लाह जैसे इंसान एक दफ़ा दरूद पढ़ा तो अपनी कैफियत बयान करवाई, क्या किस पोजिशन में पहुँची। अल्लाह ने फिर खुद तशीस की, खुद फरमा दी पहले कि तू मामूली चीज़ तो नहीं है दरूद शरीफ का पढ़ना, कितनी बड़ा इनाम उस वक्त, दस रहमतें अल्लाह की, एक रहमत अल्लाह की। सोचें सर, मैं तो कहता हूँ सारी दुनिया अल्लाह की एक रहमत पर कायम है, जिस इंसान को सही दस रहमतें मिल जाएं उसका वजूद कितना वजूद बन जाएगा, उसका कितनी ज़िंदगी उसकी अजीम हो जाएगी। दस रहमत एक दूसरी पर, दस रहमतें मिलना, दस गुनाहों का माफ़ होना, जन्नत में दस दर्जों का बुलंद हो जाना, दस नेकियों का मिल जाना। जिस आजिज़ ने गुनाहगार ने आपको दुरूद की बात बताई है कि आंखों से देख लिया वहीं खड़े खड़े सब रशी ख़त्म कर दिए, बड़े मज़े से जाता था, फिक्र ही नहीं होते, वहीं दुरूद शुरू किया वो और डरता ही बहुत तक। सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त अल्लाह के नबी का दुरूद शरीफ है। अगर हम सरकारी दोस्तों में सही ताल्लुक पैदा कर लें तो जिस तरीके से यहाँ खींच रहे हैं अपने जानवी की तरफ, तो वहाँ किस तरह दोज़ख़ से निकाल के जन्नत में खींचेंगे इंसान। कैसी कैसी मिसालें हैं वास्तव। तो बचना चाहिए हम गुनाहों से भाई, मैं भी बचूँ इंशाल्लाह, आप भी कोशिश करें कि गुनाह से बचनी, जो गुनाह जिसको कहा है अल्लाह के नबी ने वाकई गुनाह है, उसके पीछे आग है, आग है उसके पीछे। यहाँ महसूस नहीं कर रहे कि भाई ये भी आग है, इसे मना किया है, घरों से वो चीज़ें निकाल दो जो आग से भरी हुई हैं, तभी तो रहमत नहीं आती घरों में, बरकतें नहीं आती, बीमारियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लड़ाई आती हैं, झगड़े आते हैं। अब यह है कि भाई अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें किसी में ज़्यादा इम्तहान होता है, किसी में ज़्यादा मेहनत में डाल देता है, उसी तरीके से फिर उसको अल्लाह ताला इनाम भी देता है। किसी के लिए बहुत आसान होता है, बीवी इसकी बहुत अच्छी है, चलो हाँ जी ठीक हम करते हैं, ताउन हो गया, बच्चे भी हाँ जी ठीक है ताउन हो गया, और किसी घर के अंदर तो अल्लाह तूफ़ान मचा होता है, ये नहीं होगा तलाक ले लूँ, ये नहीं होगा घर छोड़ दूँ, ये नहीं होगा फला कर दूँ, ये नहीं होगा, ये भी होता है। तब ये तो इसमें आप अल्लाह की हिकमतों को हम नहीं पहचान सकते कि वाकई ये चीज़ उसके लिए ऐसी होनी ही चाहिए थी, क्योंकि अल्लाह ने जो की है तो उसको शिकवाना नहीं चाहिए, उसकी वजह से उसको दीन नहीं छोड़ना चाहिए या दीन में कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है मुस्तैद से लगा ही रहना चाहिए कि मेरे लिए दीन का अल्लाह ने ये रास्ता पसंद फरमाया है। अब ये तो नहीं हर आदमी क्या है कि भाई आसानी घर में हो जाए, फिर सिस्टम पे चलता रहे काम, कोई मुसीबत भी ना आए, कोई परेशानी भी ना आए, बस रुकावटें कोई ना आए, बस ये भी नहीं होता। अल्लाह ताला दीन देते हैं तो बासात मुख्तलिफ मराहल से इंसान को गुजरना पड़ता है, जन्नत के मुकाबले में वो क्या दुश्वारी है, कुछ भी नहीं है, चार दिन की बात है, तो साथ अट जाए कायम रहेगी। ये जब पता चल गया यह गलत चीज़ है, और बताने वालों की मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी साथ है और बहुत बड़ा शफीक से, इससे बड़ा हमदर्द भी नहीं कोई हो सकता, और इससे वाला बताने वाला भी कोई नहीं हो सकता, जिससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भी नहीं हो सकता, कि जो अपने चाहने वालों को मदीने मुनव्वरे में भूखा नहीं छोड़ता है, पैसे देकर वापस भेजते के जाओ, तो कैसे हो हमें वहाँ आखिरत में कैसे छोड़ देंगे, वहाँ तो जैसे कोई नहीं बचेंगे ना। इसके लिए ये कि अब जिस पर जितने हालात आ जाए, किसी के लिए आसान है, किसी के लिए मुश्किल है, किसी लिए कोई प्रॉब्लम है, किसी लिए कोई प्रॉब्लम है, कोई सेहतमंद होकर कर रहा है काम, कोई बीमार हो गया बेचारा, कोई बहुत तंदुरुस्त है, कोई मुफलिसी में है, कोई कर्ज़ों में है, किसी काम नहीं चलते, किसी के जॉब ऐसे हैं, किसी के काम ऐसे हैं, वो अमल नहीं कर सकता, ये सब। लेकिन बात समझ में आ गई है, इन तमाम मराहिल को हमने तय करना है मोहब्बत और प्यार के साथ और हिम्मत के साथ और दुआओं के साथ। अल्लाह ताला ये काम तो मैंने करना है, मैंने पहुँचा दिया है, क्योंकि अल्लाह ने नहीं फरमाया कि बहुत बड़ी बेवफाई होगी कि ईमान तुम्हें मिला, कुरान तुम्हें मेरे सदके से मिला। सब किसके सदके से मिला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। क्या एहसान है हमारा, हम एक सुन्नत पे अगर नकल करने पे भी ये कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कि नकल करने पर भी कोई हमें छोड़ा है, नकल के अंदर भी इतना बड़ा सवाब रखा है कि इसको इंतहा ही कोई नहीं। आपसे ताल्लुक रखने में किसी चीज के अंदर भी अल्लाह को किसी चीज में कम से कम सवाब किया जन्नत है। किसी चीज के साथ भी ताल्लुक रखने में कम से कम सवाब, तो कहता हूं उसको जो कोई हदीस नहीं सुना, अपने जौक की बात कर रहा हूं कि कम से कम सवाब तो ये होगा कि जो जन्नत आगे से सवाब जो उसका जो है उसका तो कोई सोच भी नहीं सकता क्या सवाब। अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत करने में ताल्लुक छोड़ने तो कोई एहसान है कि भाई हम ये सुनत पे अमल कर लिया तो बड़ा हमने काम कर लिया, ये बड़े हमने तीर मार लिया, बड़ा हमने फलां कर लिया। उनसे पूछो खुदा की कसम, आदमी सृष्टि को देख नहीं सकता अल्लाह को, यानी महफ हो जाते हैं जहन। मैं तो कहता हूँ अकल मेरी तो पागल हो जाती है, महफ मैं समझ नहीं आता कि क्या इंसान थे, क्या लोग थे, कि कैसी कैसी कुर्बानी के साथ नबी पाक से मोहब्बत करने वाले बोले, कितनी कुर्बानी आदमी नहीं सो सकता, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, यानी कोई हद ही नहीं किसी चीज की कि कोई एक चीज भी दूर से नजर आ रही होगी। आसर मुफसल सी पड़ोसी दुश्मनी घिराव मुसीबतें कत्ल मार दुश्मन मार रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, घर में है ही कुछ नहीं, फाके मस्ती यानी कुछ भी नहीं, अहले बैत से लेके सहाबा तमाम तक कुछ भी नहीं। और अल्लाह मोहब्बत का ये दर्जा कि कहते हैं कि अगर एक सेकंड में मैं चेहरे वारे को ज़ियारत ना करूं तो मैं समझता हूं मैं मर गया। सहाबियों के ये शौक था मोहब्बत शौक और शौक का ये इन था हम लोगों के कि हो सकता है कायनात में पैदा इंसान मुझे बताएं ऐसी मोहब्बत करने वाला। यही थी हमें रोज़ा रखना पड़ता है अपना ये 20 घंटे हो गए 19 घंटे आगे तो सोने के लगा लेना 10 घंटे सोते रहते ऐसे पड़े तो क्या कमाल इसमें हो रहा है। उसके बाद भी हालत बड़ा मुश्किल होती है कि जहाँ दुरुस्ती भी मुँह से नहीं निकल रहा होता। ये तो इस मजलिस की बरकत है जो उछल उछल के आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने इस वक्त लोग बिल्कुल टिंग हुए होते हैं ना, फ्यूज सारे घर में झगड़े हुए होते हैं, कोई बात बात पर आदमी लड़ रहा होता है। इस वक्त तो आप देखें ना हमारे मुल्कों में गर्मी से वजह ये आप सोचें कहाँ एक मार्का हुआ है अल्लाह को किस जगह पे हुआ है, और सख्त गर्मी प्यास भूख उससे फालिग हो गए तो उसे फिर अलान उठो चलो वहां तुमने फिर जाना है। और खुशी के साथ साहब इसको कबूल कर रहे हैं तो दुनिया में कोई हो सकती है ये सिर्फ एक ही चीज थी वो बरकत थी मेरे पहले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत मोहब्बत को खींचती है आपकी बरकत निशान। ये भाई ताल्लुक की बात है, अल्लाह ने बहुत बड़ा करम कर दिया हमें आपका उम्मती बना दिया और ताल्लुक दे दिया, उसी ताल्लुक हम बढ़ाई और बढ़ने के लिए कितना कितने कितने रास्ते खोल दिए कि बढ़ाओ मेरे नबी से ताल्लुक को बढ़ाओ जितना बढ़ा सको, बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। पहला रास्ता क्या है इसका? सुन्नतों पे अमलना। सुन्नत तो वही है, घर में जा रहे हैं बिल्कुल सोचें आप सब उसमें क्या फरमाया घर में जाने के लिए जी सुन वैसे जाओ खाने के लिए बैठने में हम घर में जाने के बाद क्या फरमाया कि सबसे पहला काम क्या करो सीधे जाते सबसे पहला काम सलाम करो ये नहीं कर सकते हम सोचने की बात है कितना गलत ये भी नहीं होना हमारे अंदर जाते हुए दुआ कर लें दुआ के अंदर चले जाए अल्लाह ताला ने ये भी एक घर मुझे मुशाहिदा करा दिया सोचने की देखें पूरा सीन जिस वक्त मैं वहाँ पढ़ता था नमाज ये तकवीत के लिए बातें कर रहा हूँ, मैं अपने कश्फ नहीं बता रहा आपको कुस्तखुल्ला क्या उसमें वो कश्फ करामात बता, ये कश्फ नहीं होती चीज़ें, ये तो आपको ख्वाब में नजर आती चीज़ें नहीं आती, अरे को आती तो जो मुझे नजर आएगी मैं आपको बता रही हूँ, कश्फ ये करामात नहीं, इसमें जाके वलीअल्लाह हो गए कल को एक और फितना शुरू हो जाए, देखो जी लोगों को कश्फ बता रहे हैं मुकामात बता रहे हैं, बहुत गिरा हुआ इंसान वो अल्लाह सुबहान तआला वजह में खैर ये उसकी ये हो सकती है, ये इस बात बताएं आने के बाद ये चीज़ ज़ाहिर होने के बाद दिल में जाए आपको बता रहा हूँ तो ज़ाहिर इसकी वजह एक ही हो सकती है, ताकि ये बात बताई जाए और लोगों को उस पर तकफीत हो कि वाकई ऐसा होता है, तभी सुनाते हैं ख्वाब ऐसे, मैंने भूल जाता है ये बात, हज़ारों चीज़ें भूल जाते हैं आदमी ख्वाब, वो मुझे रोज़ रोशनी की तरह वो ख्वाब मुझे याद है कि देखिए सुनत पे करने का क्या हाल होता है आदमी, मैं मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ अंदर मस्जिद में तो एक शख्स खड़ा है, एक टोपी देखी आपने वो जो होती है गोल सी जो पठान टोपी कहते हैं उसको क्या कहते हैं, गोल सी टोपी थी ऐसे अक्सर पहनते हैं पठानी टोपी कहते हैं, उस टोपी की शक्ल का इंसान छतरी दाढ़ी छोटी कटी हाफ और इतनी तेज़ी से काम कर रहा है, मैं मस्जिद में जा रहा हूँ ये गली बिल्कुल सीन सामने है, मैं बताऊँ आपको कि कौन शख्स है वो क्या कर रहा है, उसमें इतनी ताकत है कि वो एक हाथ से तीन आदमी इधर से पकड़ रहा है, दो इधर से पकड़ रहा है, आगे से जंप मार रहा है, एक ही वो शख्स इतना तेज़ी से काम कर रहा है लोगों को पकड़ने में कि मैं खड़ा हो गया देखने लगा ये हो क्या रहा है, ये क्या काम कर रहा है और कानों के अंदर कुछ कर रहा है और उन लोगों के चेहरे तब्दील हो रहे हैं और वो लोगों के चेहरे में जानता हूँ, समझ गया, हत्ता कि मैं आपको ये बता दूँ कि जब मैं गया वो मेरे साथ मस्जिद में गया वो मैं उसके साथ ट्रिक मारी, बस मस्जिद में जाने से मुझे रोक रहा था उन लोगों को खींच रहा था, उसने मुझसे ट्रिक मारी लेकिन मैं एकदम मस्जिद के अंदर चला गया, तो वो आया भागा तो मस्जिद में उस वक्त मैंने देखा कि मुफ्ती साहब असलम साहब वो थे और एक और मौलाना साहब बैठे कुछ दर्श दे रहे हैं मस्जिद के अंदर नमाज के टाइम, जो सही बात मैं आपको जिसका व्यंग था मेरे सामने पूरा, तो एक और मौलाना है अपने कमरे में बैठे तो वो फिर दहलीज पे आकर रुक गया, तो मैं समझ नहीं आदमी कौन है, खैर मस्जिद के बाद दूसरा माहौल चेंज हुआ मैं वापस घर में आने लगा, उस आदमी की वही कार्रवाई जारी थी पूरी। अब क्या हुआ कि मैं घर तक पहुंचा तो बिल्कुल सामने बिल्कुल देख रहा हूँ को गाड़ी में होता है सामने रुका और बड़ी तेज़ी के साथ फिर उसने मेरी तरफ हमला कहीं आया पकड़ने के लिए, तो इसी तसब्जब में मैंने अब देखें अब मैं आपको बता दूँ असल सुनत की बात, मैंने वो दुआ पढ़ना भूल गया अल्लाह खैर मस्कर जम जम पढ़ते हैं ना जाने की दुआ घर के अंदर याद होगी सबको माशाल्लाह, जल्दी में मैं एक कदम दुआ आ गए तो मैं वो दुआ जो थी ना जहन में नहीं आई उस चक्कर के अंदर तो एकदम मेरे साथ अंदर, और जब वो अंदर आया तो मुझे याद है कि मैंने दुआ नहीं पढ़ी, डेवरी के अंदर मैं पहुँचा ना मैंने दुआ पढ़ दी, जब दुआ पढ़ दी तो अंदर नहीं आ सका, वो डेवरी रुक गया वो भी रुक गया मैं भी रुक गया बैठ गया, मैं कहता तुझे तकलीफ़ क्या है, कहते जी मैं शैतान हूँ तो बड़ी उससे बात गुफ्तगू हुई फिर लंबी चौड़ी शैतान से जनाब, तो अंदर नहीं आ सका, बहुत कोशिश की कि वो अंदर आए मेरे घर में, तो ये अल्लाह पाक ने दिखाया कि ये ताकत है इस दुआ की जो हम नहीं पढ़ते, ताकत है। उसके बाद जब ख्वाब खतरनाक है वो नहीं बताना चाहता, आगे रास की बात है क्या हुआ, वहाँ आँखों से देखी वो चीज़ भी जिस घर में वो गया ना उसके बाद, और उस घर के अंदर मैं घर नहीं बताऊँगा आदमी बताऊँगा वो क्या कि मैं तो धक्के दे दिए कहता मैं तो जा ही नहीं सकता, फ्यूज हो गया ना वो लॉक हो गया उस दुआ से, जैसे मुझे आए वो इत्तेफाक से मैं घर तो गया ही नहीं, मैं एकदम मैं कह जो जब आदि हो जाता ना आदमी दुआ पढ़ते पढ़ते तो वहाँ तक तो ले आया मैं उसको, जल्दी में दरवाज़ा खोला मैं बचने के लिए तो अंदर आ गया प्रैक्टिक अंदर आ गया, वो अंदर जाने के चक्कर में था मैंने फ़ौर वो दुआ पढ़ दी अल्लाह खैर मखजी बस जना, तो वो जब मैं निकला पता नाकाम हो गया था, उसके बाद मैंने देखा कि एक घर को से इसी तरह कुंडी खड़गाई और उस आदमी ने उसको बकायदा रिसीव कर लिया हाथ में और अंदर ले गया, तो मैं कह तो अजीब चीज़ देखी फितनों की, मैं उसको कैसे बताऊँ कि भाई तुम अपने आप को सही करो अपने हालातों को सही करो सुन्नत के तरीके भी डालो वरना यह फितना पैदा होगा बहुत बड़ा इस जगह से, तो ये है ये वाकयात हैं आपको नजर, ये क्या एक सुन्नत हमने कता की नबी के, मुझे बताएं कितने लोग करते हैं, क्या हालात होते होंगे हमारे घरों के अंदर, क्या असरात होते होंगे इबादत के। उस आदमी का मैंने काम देखा, अजीब अजीब काम था। शैतान जिस तरह काम करता है वाकई तो वाकई शैतान, उसकी तो हद ही कोई। कितना लोगों को वड़गड़ा लिया उसने, मस्जिद तक के अंदर पहुंच गया आदमी के साथ। वजह क्या थी दिखाने की कि ये लोग जो है सुन्नतों में पल नहीं कर रहे। किसी का चेहरा सही नहीं था, किसी की कुछ चीज़ सही नहीं थी, किसी की कुछ चीज़ नहीं, सुन्नत में बल्कि गाफिल थे। तो दिखाया ये चीज़ था कि सुन शैतान को मारने वाली चीज सिर्फ एक ही है, और वो क्या चीज़ है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको क्या मालूम कि जो आपने पहना है इस सुन्नत से क्या क्या हमारा हिफाजत हमारी होगी आप सोच नहीं सकते, इसकी डिटेल नहीं जा सकती। क्या क्या हिफाजत हो जाती है अल्लाह के नबी की सुन्नत से। अब कितनी दफा हम घर में जाते हैं, खास हदीस से अल्लाह के नहीं बताते, मैं तुम्हें गुनाहों से बचाने वाली बातें बताता हूँ। अंदर गए क्या होता है, अब सरकार शैतान तुम्हारे साथ अंदर, जब शैतान अंदर जाएगा तो तुम खाओगे तो तुम्हारे साथ खाना खाएगा, फिर तुम्हारी रात भर तुम्हें मस्ती करेगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे औलादों के साथ मस्ती करेगा, पूरे फैमिली को अंदर ले आएगा। सब हमारे घरों में होता है, सिर्फ एक गलती की कि हमने अंदर जाते हुए क्या नहीं किया, दुआ नहीं, सुन्नत पे मत नहीं की। दुआएं और पढ़ लें, उसकी वजह जो दुआ नबी बंग जबान मुबारक से निकली है उसके अलावा दुआ पढ़ के चले जाएं, शैतान साथ जाएगा, उसको नहीं मार सकेगा। जैसे कहते हैं इंसान के अंदर क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं ना, तो एंटीबायोटिक मुख्तलिफ काम करती है, ये डॉक्टर बताएगा। हर बैक्टीरिया को मारने के लिए एक एंटीबायोटिक तो नहीं होती ना, होती है, क्यों कि उसका असर वही बढ़ा सकती है जो उसमें होगा एंटीबायोटिक। इसी तरह नबी पाक जबान वाक से जिस मकसद की दुआ निकली है वो उसी के लिए काम करती है, उसी को करेगी, थक से कर। आप कितनी आयतें पढ़ना शुरू हो जाए लेकिन असर नहीं होगा, इसी बात में होगा जो सरकार की छोटी सी दुआ होगी। मैंने बताया ना कि वहां कितनी उस मौके पे कितनी दुरूद शरीफ पढ़ने, जितने पढ़ने, लेकिन एक दुरूद शरीफ जो था कि इससे मेरा कुल मिलेगा, उसने रास्ता खोल दिया। तो इस चीज पे यकीन रखो कि वही चीज करो, वही अमल करो, वही बात करो जो सरकार ने फरमाई है। अपनी तरफ से ना जुड़ो किससे कहानी कि चलो यार आज ये कर लेते हैं, ये भी तो कुरान है ना यार, ये भी तो दुआएं है ना यार, ये भी तो बहुत बड़े बड़े नाम है ना। इसीलिए अकीदा इतना पक्का रखे कि जो बताई जा रही है ना बात उसमें जम जाओ, अल्लाह की तरफ उसी पे लिखा है सब कुछ, मामला उसी पे बनेगा। नहीं अब ये कर लेते हैं, ये हम नहीं फलां कर लेते हैं, लेकिन भाई जो तुम्हें काम बताया है उसी काम पे जम जाओ, हर रास्ता उससे खोलेगा। खास तौर पर ये चीज देखा करें जिस जिस चीज पर यानी हम नबी के सुनाए ये दुआ पर ये चीज है ये इनाम मिलता है, तो उसको पक्का कर लें कि इसी के ये इनाम इसी दुआ से मिलेगा, इस दुरूद से ये चीज हासिल होगी। बात बहुत से दुरूद शरीफ ऐसे हैं जिसको पता इसके ये फजाइल हैं, इसके ये फजाइल हैं, ऐसे होता है ना आदमी का, तो वहां दूसरी चीज काम नहीं आ सकती। और जिस गुनाहों के लिए आप सरकार ने जो दुआ बताई है, जो सुन्नत का तरीका बताया है, तो वही काम करेगा। तो सब किस में मिलेगा, नबी पाक की सुन्नत में मिलता है। तो हमारा क्या काम है, हम इस चक्कर में ना पड़े कि क्या चीज से क्या मिलेगी, हम सब सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दें किस्सा घर से भी बाहर से भी अंदर से भी छोटी भी बड़े भी जिस्म भी ऊंचे भी सब इंशाल्लाह इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक नसीब करे।